मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 5 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मुझे आप सबसे कुछ हट करके बातें करनी है और उसमें से पहली बात तो यह, और जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, ये खबर आप सब तक पहुंच ही चुकी होगी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो प्री के होने थे 31 मई को, वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। डेट अभी निश्चित नहीं की गई है और ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। UPSC की मीटिंग हुई थी, उन्होंने बकायदे प्रेस रिलीज जारी करके ये बात कही है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अभी इसे स्थगित किया जा रहा है। आगे की डेट के बारे में 20 मई को फिर से मीटिंग होगी, उसमें जैसी भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इस निर्णय को सुनने के बाद आपके मस्तिष्क में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी। जिनकी तैयारी अभी आधी अधूरी रह गई थी, जो थोड़ा सा और वक्त चाहते थे, नो डाउट कि उन्होंने राहत की सांस ली होगी। लेकिन मुझे फिर ऐसे स्टूडेंट पर थोड़ा सा डाउट यह भी होता है कि भाई डेट तो अभी से फिक्स नहीं हुई है, पता नहीं कब से फिक्स हो चुकी होती है, इतने दिन बीच में मिले होते हैं। अगर इसके बाद भी तैयारी नहीं हुई है तो अब ये जो थोड़े से दिन और मिल गए हैं, इसमें कितनी तैयारी हो पाएगी या इसका सही तरीके से उपयोग किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, इसके बारे में थोड़ा सा संदेह बना रहता है दोस्तों। और दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड हो गई थी, उन्हें लग रहा होगा कि यार अब कुछ दिनों के लिए और उसी तरह से मरना पड़ेगा, रात दिन खपना पड़ेगा, एग्जाम दे देते बात खत्म हो जाती और इसके बाद राहत की सांस ले रहे होते। खैर, ये अपनी अपनी दोस्तों स्थिति होती है। अब क्या संभावनाएं लगती हैं, इन संभावनाओं के बारे में मैं केवल अपने विचार दे रहा हूं। 20 मई के बाद शायद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों संभावनाएं जो भी हों, आपको अपनी तैयारी की गति भले ही आप उसे थोड़ा सा धीमा कर दें, यदि आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी हो तो, अदरवाइज आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अब आप देखिए कि संभावना क्या बन रही है। हमारे पास इससे पहले के प्रमाण मौजूद हैं, उदाहरण मौजूद हैं, जबकि UPSC ने अगस्त के महीने में प्री एग्जाम कंडक्ट किए हैं, अगस्त के महीने में। इसको लेकर के कुछ लोगों की राय ऐसी भी है कि एग्जाम अगस्त तक जा सकते हैं, लेकिन यहां फिर मुझे तार्किक रूप से सोचने पर एक तथ्य मिलता है कि देखिए अभी जो यूपीएससी के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं वो सिर्फ सिविल सर्विस के ही एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी उसने बहुत से एग्जाम पोस्टपोन किए हैं और अभी भी जो होने वाले होंगे, हो सकता है कि आगे उन्हें भी पोस्टपोन करें। तो जो पोस्टपोन किए गए जो एग्जामिनेशन की जो संख्या है वो लगातार काफी होती चली जा रही है। जब ये अगस्त में एग्जाम होते थे प्री के, तो उस समय जो दूसरे एग्जाम थे वो सब अपने अपने समय पर हो रहे थे, तो उन्होंने उसको अगस्त में एडजस्ट कर दिया। अब अगर हम सोचें कि इसे भी इतना टाल करके वो अगस्त में एडजस्ट करेगी, तो हो सकता है कि उसके लिए दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम उसको लेने हैं। तो क्या हो सकता है, केवल मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगस्त के भरोसे अपनी प्रिपरेशन की गति को कम ना करें। हो सकता है कि 20 मई को यह निर्णय लें कि वो 20 जून को एग्जाम ले रहे हैं अगर स्थितियां ठीक हो गई तो, या उससे पहले वो 10 जून को ले रहे हैं, क्योंकि अगस्त तक ले जाने में पता लगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पहले से ही एग्जाम लेने की, और यूपीएससी उसको कंडक्ट नहीं कर सकेगी। और देखिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है कि दूसरे एग्जामिनेशन को वो थोड़ा सा आप कह लीजिए कि इधर उधर के बारे में सोच सकती है, लेकिन जो ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसको बहुत ज्यादा तरजीह देती है और इसके आधार पर वो कुछ भी निर्णय ले सकती है, और इसके जो निर्णय होंगे वो प्रायोरिटी पर बेस्ड होंगे। इसीलिए आप देखिए कि दूसरे एग्जाम को डिफर कर दिया, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की डेट के बारे में अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है और कल जाकर के ये कहा है कि ये पोस्टपोन होगा। तो इसी से पता लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि जो कल मैंने आप लोगों से ऑब्जेक्टिव एक डिसीजन के बारे में बात किया था, आउटलुक के बारे में बात की थी, उसके बारे में मुझे बहुत प्रतिक्रियाएं मिली हैं, आप लोगों ने उसे सराहा है, और खासकर मैं सराहना कर रहा हूं उस विद्यार्थी की जिसने कल मेल लिखकर अपनी गलती को स्वीकार किया है। डेफिनेटली मैं उसके मुक्त कंठ से सराहना करूंगा, क्योंकि यदि आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो यह विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक जबरदस्त कदम होता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि एक जंप होता है, क्योंकि सामान्यतया हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि अगर हम स्वीकार नहीं करते तो सुधरती भी नहीं, सुधरती नहीं तो उन्हीं गलतियों को हम दोहराते रहते हैं, और जब गलतियों को हम दोहराते रहेंगे तो हमारे परिणाम भी दोहराते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा, नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, राइट। आप लोग भी अपने मस्तिष्क को, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उसी रूप में खुला रखें। और आज इसी के कंटिन्यूएशन में मैं मुख्य विषय के तहत प्रशासनिक निर्णय के बारे में आप सबसे कुछ चर्चा करूंगा। एक बात और यह जो बात है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए है। दोस्तों, मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूं कि किसी एक घटना के संदर्भ में कि आपको यह लेक्चर सुन लेना चाहिए, यह लेक्चर सुन लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस तरह के लेक्चर्स की संख्या बढ़ती जा रही है ना। दो तीन दिन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि आप लेक्चर जाकर के सुने। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं, लेकिन मेल पढ़ने के बाद मुझे पता लग जाता है कि नहीं, कुछ तो पालन जरूर हो रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप पालन कर सकेंगे दोस्तों तो वो मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजिए कि उत्साहवर्धक होगा। खैर, लेकिन यहां मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट ये कि यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी इशू पर बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप इस लेक्चर को सुन ले, आप लोगों में से बहुत से हैं जो सुन रहे हैं, तो वे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उनसे मैं प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। और प्रतिक्रिया यह कि जब आप उस टॉपिक पर उस लेक्चर को सुन ले रहे हैं और इसके बाद आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, पहले ही सुन चुके हैं डेफिनेटली, इसके बाद उससे रिलेटेड अखबार में भी आपने कुछ पढ़ा है, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जब आप उस पूरे लेक्चर को सुन करके इन्हें फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या अंतर नजर आता है, प्लीज इसके बारे में मुझे बताएं। मैं अपने रिव्यू के लिए यह बात कह रहा हूं कि अगर मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं इस तरह के निर्देश आगे भी देता रहूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों की तैयारी में बिल्कुल हस्तक्षेप करना नहीं चाहूंगा। आप लोग अपने ढंग से बिल्कुल तैयारी करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, तो प्लीज जरा इसके बारे में मुझे अपना अपना फीडबैक अवश्य दें। तो दोस्तों, आइए आज के मुख्य विषय पर आते हैं, और मुख्य विषय में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं उसके शिखर सम्मेलन में कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है और रेडियो पर एक खासकर आपके दूरदर्शन न्यूज में उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है। ये बेसिकली सब आप यूं कह लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था। मैं चाहूंगा कि नाम के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखें, चूंकि यहां वक्त नहीं है, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखिए पूरी की पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था जो पूंजीवादी राष्ट्र था, और दूसरे का नेतृत्व रशिया कर रहा था जो साम्यवादी राष्ट्र था। तो ये दो अलग अलग गुट हो गए। 1945 के बाद ही आप देखते हैं कि दुनिया में जो उपनिवेशवादी जो राष्ट्र थे जिन पर शासन कर रहे थे यूरोप के देश, वो आजाद होने शुरू हुए। तो जो ये देश आजाद हो रहे थे अब उनके सामने संकट खड़ा हुआ कि भैया हम अमेरिकी गुट में शामिल हों या हम रशिया के गुट में शामिल हों। लेकिन इनकी मजबूरी ये थी कि इनको दोनों ही अपने अपने लिए उपयोगी लग रहे थे, तो एक गुट में ये मिलना नहीं चाहते थे। तो फिर कुछ लोगों ने फैसला किया, जिसमें आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, इन लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम दोनों ही गुट में हैं या किसी भी गुट में नहीं है। तो इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की, गुट निरपेक्ष, यानी कि हम दोनों गुटों से तटस्थ हैं, हमारी जैसी जरूरतें होंगी हम दोनों से बराबर स्तर पर बात करेंगे। इस थ्योरी को लेकर के यह आंदोलन आगे बढ़ा था। इसके बारे में आपकी जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए। न्यूज के हिसाब से एक तथ्य आप अगर जान लेते हैं तो बेहतर होगा कि अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह COVID-19 के बारे में आइए सकारात्मक खबरों को देख लेते हैं। स्वस्थ होने की जो हमारी दर है वो और अच्छी हो गई है, 27.52% हो गई है, बेहतर है। और साथ ही साथ जो संक्रमित पेशेंट जो है उनकी जो डबल होने की जो दर है, कह लीजिए पहले, इससे पहले हमने कहा था कि 11 दिन में डबल हो रहे हैं, अब वे 12 दिन में डबल हो रहे हैं, यानी कि वहां भी एक अच्छी खबर हमें सुनने को न्यूज में मिली है, राइट फ्रेंड्स। आइए अब मैं मुख्य विषय पर बात करता हूं, वह है प्रशासनिक निर्णय। दोस्तों, दो निर्णय मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, और खासकर जो स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं मेन एग्जामिनेशन में, उन्हें इन बातों पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अप्लाइड फॉर्म के होते हैं। देखिए, जो आपके जनरल स्टडीज के तहत पूछे जाते हैं वो तो व्यावहारिक स्तर के होते ही होते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ज्यादातर व्यावहारिक स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट? तो मैं दो निर्णय अभी आपके सामने रख रहा हूं। पहला, सरकार ने जब लॉकडाउन करने का निर्णय लिया, मैं लॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूं, राइट? तो अब आप देखिए कि कैसे उसके उस पूरे के पूरे निर्णय में जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो गायब हो गए। पता नहीं उन पर ध्यान नहीं दिया गया या क्या किया गया, प्रवासी मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं की गई। निर्णय लिया गया ना कि लॉकडाउन किया गया और अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, मतलब 24 घंटे 48 घंटे का कोई वक्त नहीं दिया गया। ठीक है, उनके पीछे अपने लॉजिक हैं, मैं वहां लॉजिक सही और गलत की देखिए मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, वो सही था या गलत था, मैं तो आपको केस स्टडी के लिए दो निर्णय दे रहा हूं, केस स्टडी के लिए, है ना। अच्छे से अच्छे भी जो निर्णय होते हैं उनकी भी केस स्टडी की जाती है, ऐसा नहीं कि केवल गलत निर्णयों की केस स्टडी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप देखिए कि जब जो MBA वगैरह कर रहे हैं, जाकर के उनसे पूछे कि बकायदे इस कंपनी ने कैसे इतनी सफलता हासिल कर ली, उनका भी केस स्टडी होती है कि भैया हम जरा जाने तो कि ये कंपनी कैसे इतने फास्ट तरीके से आगे बढ़ी, है ना। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर उसी समय ये घोषणा कर दी जाती कि जो भी मजदूर हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने स्थानों पर ही रहें, सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करेगी, उन तक खाने पीने की चीजें पहुंच जाएंगी, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो वहीं बने रहें, केवल ये अगर ये छोटी सी घोषणा होती तो आज देखिए कि माइग्रेंट लेबर को लेकर के कितनी बड़ी समस्या इस देश में खड़ी हो गई, धन भी खर्च हो रहा है, लोग भी उसमें लगे हुए हैं, जिनके लिए किया जा रहा है वो भयानक रूप से परेशान हैं, उद्योग भी अब परेशान है, जबकि लॉकडाउन खत्म हो गया है तो उनको लेबर नहीं मिल रहे हैं, लेबर वापस आने को तैयार नहीं है, अगर लेबर वहीं है जहां वो पहले काम कर रहे थे तो वो बिल्कुल परेशान हो चुके, कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें अपने गांव लौटना, हमें अपने घर जाना है, तो कितनी सारी परेशानियां पैदा हो गई हैं, ये एक निर्णय। दूसरा निर्णय अभी सरकार ने जो लिया है वह है शराब की दुकानें खोलने का निर्णय, है ना, कि लॉकडाउन 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर वो चाहें तो ऐसे निर्णय ले सकते हैं। आपने देखा है कि लॉकडाउन 3 में, मतलब एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसका सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत से जो निर्णय हैं वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिए हैं, और राज्य सरकारों ने भी स्थानीयता को महत्व देते हुए बहुत सारे निर्णय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पर छोड़ दिए हैं कि वो निर्णय लें, जैसी स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लें। तो शराब की जो दुकानें हैं उनको खोलने का निर्णय, दोस्तों ये निर्णय कितना सही है, कितना गलत है, क्यों लिया गया है, नहीं लिया जाता तो क्या होता, इसके बारे में आप सब अपने ढंग से विचार करें। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, आप मत समझिए कि बिना इस प्रैक्टिस के आप मेन एग्जामिनेशन के आंसर दे सकेंगे, प्लीज इस भ्रम से अपने आप को बचाइए। हो सकता है कि मैं ये जो होमवर्क दे रहा हूं आपको बोझ मालूम पड़े, बेकार मालूम पड़े, जो भी मालूम पड़े, लेकिन है अनिवार्य ही ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और आपकी मदद के लिए, खासकर जो मैं शराब के ठेके खोलने के निर्णय की बात कर रहा हूं, एक दो मैं आपको एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल है इंग्लिश में और एक दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है इंग्लिश में, लेकिन मैं यहां एक सजेशन देना चाहूंगा, और वो ये कि पहले आप अपने ढंग से कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि यह निर्णय सही है, क्यों है, गलत है, क्यों है, तार्किकता के साथ। ये नहीं कि हाँ ये सही है गलत है बस कर दिया खत्म, नहीं नहीं, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और आप दोनों के बारे में कह सकते हैं, दोनों के बारे में पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इस पॉइंट्स के आधार पर ये सही है, इस पॉइंट्स के आधार पर ये गलत है, और इसके बाद फिर आप इस एडिटोरियल को पढ़ें और फिर अपने उत्तर से मिलाएं, तब सही मायने में जो आपका दिमाग है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचने में अपने आप को ढाल सकेगा, और फिर आप देखिएगा कि कैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप कमाल करते हैं। दोस्तों तैयारी करने का यही सबसे खूबसूरत और मुझे वैज्ञानिक तरीका मालूम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, और दो क्लिपिंग्स के बारे में मैं आप सबसे विशेष रूप से बात करना चाहूंगा। एक है भरत झुनझुनवाला जी का, जो कर्ज लेकर खर्च बढ़ाने से बचे सरकार, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है। अर्थशास्त्र को समझने के लिए भरत झुनझुनवाले के जो भी लेख हो आप कभी मत छोड़िए। और दूसरा रुचिर शर्मा जी का है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसे भी आप पढ़ें। मेरी कोशिश होगी कि रुचि शर्मा जी के उस लेख को मैं हिंदी ट्रांसलेशन के फॉर्म में अपने करेंट कंटेंट के तहत प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बात करने के बाद, अभी मैंने न्यूज़पेपर्स के बारे में बात की, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हम आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, मीना भाकुनी, सुरभि चौहान अपाली राजस्थान से, तरुण मिश्र, अमर ज्योति जेना, प्रिया पांडे मुंबई से, हेत शाह, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, राहुल कुमार रोहतास बिहार से, सुनील कुमार शुक्ला, आकाश मिश्रा और प्रीति पाठक, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।